आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक निष्पादन के बावजूद घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र के निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बहाल करने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के अनुसार GST और IBC जैसे ढांचागत सुधार भी परिपक्व हो गए हैं और उनसे वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और यह 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव रखेगा। संसद के बजट सत्र से पहले संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी विफलताओं से छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट UG पेपर लीक का देश भर में केवल एक मामला पटना में सामने आया है। उन्होंने कहा कि CBI मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों का खंडन किया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बार बार सामने आई हैं। श्रावण माह के पहले सोमवार में आज प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी है। उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा जिले में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा और दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उज्जैन और खंडवा में आज भगवान शिव की सवारी भी निकाली जा रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीना ने बताया कि भगवान महाकालेश्वर की प्रथम सवारी ठाटभाट से परम्परागत मार्ग से आज निकाली जाएगी। महाकाल आज मनमहेश रूप में भक्तों से रूबरू होंगे। वहीं भगवान ओंकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। आज पवित्र नदी नर्मदा में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की रजत प्रतिमाओं का नौका विहार कराया गया। इसके बाद नगर भ्रमण होगा। आगरमालवा में ऐतिहासिक बैजनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उधर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर में 16वां मनोकामना अभिषेक आज से 18 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर में गुप्तेश्वर कचनार भोलेकुटी पशुपतिनाथ सहित सभी प्रमुख शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शिवपुरी के प्रसिद्ध खोड़ सहित प्रसिद्ध धाय महादेव मंदिर पर और शिवपुरी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर भी भारी भीड़ देखी गई। नर्मदापुरम जिले में सेठानी घाट स्थित प्राचीन काले महादेव मंदिर में आज सुबह अभिषेक कर महादेव का पूजन अर्चन और महाआरती हुई। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल में 117 खिलाड़ी हैं, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया है। बैतूल में 2 ग्राम पंचायतों के सचिवों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों ही सचिवों के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जा रही थी। और डिंडोरी जिले में आज नर्मदा घाट के किनारे सफाई के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए, नमस्कार।